नाम की महिमा हो। जो विषय हम देख रहे थे उसी विषय को हम जारी रखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु हमें जय देता है, प्रभु हमें अनुग्रह देता है, लेकिन कुछ कर्तव्य है जो हमें भी करना है। और हमारा भाग जब हम करते हैं, परमेश्वर का भाग जब परमेश्वर करता है, तब जरूर सफलता और आशीष हमें प्राप्त होती है। और परमेश्वर अपना भाग हमेशा करता है, कमी हमेशा हमारे पक्ष में ही रहती है। इसलिए यदि हम हमारा जीवन सुधारें, हमारा जीवन संवारें, तब परमेश्वर से हम आशीष और अनुग्रह पा सकते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमें दुनिया पर जय पाना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना और परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करना। बाय ट्रस्टिंग इन गॉड एंड ट्रस्टिंग इन गॉड्स वर्ड एंड टू हैव अ सुप्रीम लव फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड थ्रू दीस मीन्स वी कैन ओवरकम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली डिजायर्स। और अब हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए कि किस प्रकार हमें इस शरीर पर जय पाना जरूरी है। हाउ टू ओवरकम द फ्लैश। दुनिया पर जय हम पाने के बाद ये शरीर, ये भी हमें, हमारा शरीर भी पीछे खींचता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 7:15-25 तक इसका पूरा सुंदर चित्रण दिया गया है, लेकिन सब पढ़ने का समय नहीं है। हम केवल उसका 24 और 25 हम पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको समय मिलेगा आप घर जाकर 15 से 25 तक जब आप पढ़ेंगे आपको पूरा स्पष्ट समझ में आएगा। लेकिन अभी हम केवल रोमियो की पत्री 7:24-25 हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 7:24-25।
मैं कहता भागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह में देह से कौन छुड़ाए? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः देखो तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था को व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ।
यहाँ पर पूरे पत्री में हम पूरे भाग जब 15 से पढ़ेंगे हमें सब स्पष्ट समझ में आएगा। प्रेरित पौलुस लिखते हुए कहता है ये मेरे शरीर के अंदर एक द्वंद है, एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है। और पौलुस कहता है मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन अच्छा नहीं कर पाता, मैं बुरा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन बुरा ही मुझसे होता है। और फिर ऐसा सब समझाते करते वो 24 में लिखता है हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस शरीर से कौन छुड़ाएगा? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे जय देता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम हमारे इस दुर्बल और नाशमान और पापी शरीर में भी हम जय पा सकते हैं। शरीर से, शरीर के ऊपर हमको जय क्यों पाना? इस शरीर के ऊपर हमको जय इसलिए पाना है क्योंकि शरीर के काम से परमेश्वर घृणा करता है। God hates the deeds of flesh, the works of flesh। शरीर के काम से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। मसलन उदाहरण के तौर पर इस शरीर का एक स्वभाव है क्रोध करना, है ना, गुस्सा करना। और गुस्से में हम कितना कुछ कर बैठते हैं, और झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये सब शरीर के काम है। परमेश्वर इन शरीर के कामों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अगर हमको आत्मिक जीवन बिताना है, अगर हमको जयवंत जीवन बिताना है, हमारे इस शरीर पर जय पाना है, क्योंकि शरीर के काम पुराने काम है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर एक पापी के अवस्था में हम जब प्रभु के पास आकर कहते हैं प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मेरे दिल में आइए, मुझे अपना संतान बनाइए, इस प्रकार सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दिल में आता है, हमें एक नया सृष्टि बनाता है, एक नया जीवन हमें देता है, हमारे पाप को माफ करके एक नई सृष्टि, एक नई जिंदगी वो हमें देता है, नया जीवन हमें देता है। और उसके बाद उस जीवन के नएपन में हम अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन ये शरीर के काम जो हैं, ये पुराने स्वभाव का है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने से पहले या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से पहले जो काम हम करते थे उसको शरीर के काम बोलते हैं। तो ऐसे शरीर के कामों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं, इसलिए इस शरीर पर जय पाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इन दिस फ्लैश dwells the sinful nature, इस शरीर में पापमय स्वभाव वास करता है। इस शरीर के अंदर पाप है, ये हमें पाप करने के लिए खींचता है, ये हमें पाप की ओर खींचता है। इसलिए जब तक इस पर जय नहीं पाएंगे तब तक हम इसकी ओर खींचते चले जाएंगे। और दुनिया के लोग ऐसा ही समझते हैं, इस दुनिया में खींचते जाना, इस दुनिया में बड़ा व्यक्ति होना, यह एक बड़े प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन ये तो उस खेल के समान है, एक ऐसा खेल है जिसमें जब इंसान पीछे जाता है वो जीतता है। आपको मालूम है कौन सा खेल है? अगर आपको पता है आप जवाब दीजिए। एक खेल है, देयर इज अ स्पोर्ट इन विच व्हेन पीपल गो बैक, दोज हु गो बैक दे आर द विनर्स, जो पीछे जाते हैं वो जीतते हैं। कौन सा गेम है? आप लोग मुंबई में गेम्स कम खेलते लगते हैं। नहीं नहीं, कबड्डी, कबड्डी में तो आगे आना पड़ता, वो लाइन टच करना पड़ता है। हिंदी में बोलते हैं रस्सा कशी, इंग्लिश में बोलते हैं टग ऑफ वॉर, है वड़म वाली, है ना? रस्सा कशी मतलब वो रस्सी को आप पकड़ के पीछे जाते रहे, आप क्या करेंगे? जीत जाएंगे। आप रस्सी को पकड़ के आगे आए, हार जाएंगे। पीछे जाना, जीतना है तो पीछे जाना, ये दुनिया का फिलॉसफी है ऐसा। जो पीछे जाता है, जो दुनिया में जाता है, जो दुनिया में अव्वल होता है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं, ये दुनिया में पाप है, ये दुनिया में पापमय स्वभाव, ये हमारे शरीर का पापमय स्वभाव हमें दुनिया की ओर खींचता है। लेकिन जब तक परमेश्वर के अनुग्रह से इस शरीर पर हम जय नहीं पाएंगे तब तक इस दुनिया के आकर्षण है, इस दुनिया के रंग में, इस दुनिया के मायावो में हम खींचते चले जाएंगे और संसार पर हम जय नहीं पा सकते। और एक और कारण, वी हैव टू ओवरकम द फ्लैश बिकॉज द ओल्ड नेचर इज अ पावरफुल नेचर। ये पुराना मनुष्यत्व जो है हमारा, ये पुराना स्वभाव जो है, ये शरीर का स्वभाव जो है, ये बहुत ही शक्तिशाली स्वभाव, ये कोई कमजोर नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली स्वभाव। मुझे नहीं मालूम आपने सुना है कि नहीं, लेकिन मैंने कई प्रचारकों को ऐसे बोलते हुए सुना है, सैतन अटैक्स द वीक पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ, शैतान हमारे जीवन के कमजोर हिस्सों को आक्रमण करता है, जिस जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर शैतान आक्रमण करता है। ऐसा नहीं है, शैतान हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में भी हमें अटैक कर सकता है, शैतान हमारे वीक पॉइंट्स में भी अटैक करता है, शैतान हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में भी अटैक करता है। कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं, इब्राहिम को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्वासियों का पिता, द फादर ऑफ द फेथफुल्स, विश्वासियों का पिता। परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, लेकिन एक अन्य जाति राजा के सामने खड़े होकर जब अन्य जाति राजा ने पूछा ये स्त्री कौन है, इब्राहिम ने क्या कहा? ये स्त्री मेरी बहन। इब्राहिम तुम्हारा विश्वास कर, तुम विश्वास क्या करने वाले व्यक्ति हो, तुम विश्वासियों के पिता हो, तुम्हारा विश्वास कहा? शैतान स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में भी अटैक करता है। ये पुराना मनुष्य तो ये इतना कमजोर नहीं है जितना हम समझते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली है। जब तक हम इस पर जय नहीं पाएंगे तब तक हम जयवंत नहीं हो सकते। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति, द मीकेस्ट मैन ऑन अर्थ, दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति। लेकिन याद है, एक बार जब परमेश्वर ने उससे कहा इस चट्टान से बोल तो वो पानी निकलेगा इसराइलियों को पीने के लिए, मूसा ने क्या कहा, क्या किया, चट्टान को मारा, वो भी एक बार नहीं दो बार। मूसा तुम्हारी नम्रता कहा, मूसा तुम्हारा नम्र स्वभाव कहा, शैतान स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में भी अटैक। दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा, प्रेरितों के काम पुस्तक में हम पढ़ते हैं, गॉड टेस्टिफाइज डेविड इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है कौन, दाऊद, दाऊद बादशाह। लेकिन दाऊद ने क्या किया, एक अन्य पुरुष की स्त्री के साथ व्यभिचार किया और परमेश्वर के नाम का अनादर। दाऊद तुम्हारा विश्वास कहां है, तुम्हारी पवित्रता कहां है, तुम्हारा वो निश्चल मन स्वभाव कहां है। पुराना मनुष्य तो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए जब तक इस शरीर पर इस पुराने स्वभाव पर हम जय नहीं पाते हैं तब तक हम जयवंत नहीं बन। वाय ओवरकम फ्लैश, इस शरीर पर हमें जय क्यों प्राप्त करना, क्योंकि परमेश्वर शरीर के कामों से घृणा करता है और इस शरीर में पाप का स्वभाव वास करता है, और यह पाप का स्वभाव, यह शरीर का स्वभाव बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए हमें इस पर जय पाना बहुत ही जरूरी है। अब इस शरीर पर हम जय कैसे पा सकते, हाउ टू हैव अ विक्ट्री ओवर द फ्लैश, इस दुनिया इस शरीर पर हम कैसे जय पा सकते हैं, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 4 पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 4, रोमियो 8 अध्याय 4 पद। हम जो किसके अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर पर अगर जय पाना है तो आत्मा के अनुसार, मतलब आत्मा के कंट्रोल में जीवन बिताना बहुत जरूरी। एक और पद पढ़ेंगे उसी अध्याय का 13 पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13। यहां पर भी वही बात पौलुस कहता है, जब तक वी कैन ओवरकम द फ्लैश व्हेन वी लिव अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम जीते हैं तब इस शरीर पर हम जय पा सकते। शरीर बहुत कुछ करने के लिए उकसाता है लेकिन पवित्र आत्मा एक धीमी आवाज में कहता है, स्टीफन ऐसा नहीं, ऐसा करो। और अगर स्टीफन ने उस पवित्र आत्मा की आवाज सुना तो शरीर पर जय पा सकता, और पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुना तो शरीर से हार हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को जांचना परखना है, हम किसके नियंत्रण में, किसके कंट्रोल में जीवन बिताना। पवित्र आत्मा में जीवन बिताना मतलब पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन बिताना। पवित्र आत्मा पग पग पर हमें आवाज देता है, देखो ऐसा करो, ऐसा करो। और उसके नियंत्रण में जब हम अपना जीवन बिताएंगे तब जरूर शरीर पर हम जय पा सकते। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, मान लीजिए मैं अभी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन नहीं बिता रहा, ठीक है, आई एम नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। मान लीजिए मैं अभी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन नहीं बिता रहा हूं, मीटिंग समाप्त होने के बाद शाम को मैं घर जाता हूं, है? शाम की मीटिंग खत्म होने के बाद घर जाता हूं, घर जाने के लिए जैसे ही स्कूटर निकालता हूं मोड़ पे कोई आदमी टक्कर मार देता, दूसरा स्कूटर वाला आके टक्कर मार देता, तो एकदम मैं क्या बोलूंगा, मैं अभी कंट्रोल में नहीं हूं, है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में, नियंत्रण में नहीं, मैं क्या बोलूंगा, वे आंखें या बटन है दिखता नहीं है, इतना लंबा छोड़ा आदमी आ रहा है क्यों टक्कर मार, तो मैं कुछ बोलूंगा तो वो क्या करेगा, वो सुनेगा क्या, वो नहीं सुनेगा, वो भी दो बोले, तो वो दो बोलेगा तो मैं कितना बोलूंगा, मैं चार बोलूंगा, मैं चार बोलूंगा तो वो क्या करेगा, अब फिर वो मुंह से बात नहीं करेगा, फिर वो हाथ पैर से बात करेगा, तो वो एक मारेगा तो मैं कितना मारूंगा, मैं दो मारूंगा। और जैसे हमारी लड़ाई चलती इतने में नेल्सन भाई वहां से गुजर रहे, अरे नहीं ब्रदर आओ तो मैं देख लू, नहीं नहीं उसने उसने टक्कर मार दिया, मेरे गाड़ी को टक्कर मार दी, अरे जाने दो कोई बात, जाते जाते उन्होंने उन्होंने इन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया, जाते जाते उसने मेरे को बोला देख लूंगा मैं तो वो कल चौराहे पर, कल चौराहे पर तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है देख लूंगा आ जाना कल चढ़े। गुस्सा होकर मैं जा रहा हूँ, रात को घर पहुंचता हूँ, मेरा बीबी ने अच्छा चिकन बिरयानी तैयार किया, चिकन बिरयानी मैं चिकन बिरयानी खाऊंगा क्या है? पता है आपको नहीं खाऊंगा, क्यों? कल देखना, कल तक दुनिया रुकी हुई है। फिर बाद में वो बोलते हैं चलो प्रेयर करते हैं, तुम कर लो प्रेयर, मेरे को नहीं करना प्रेयर, क्यों? वो कल देखना है उसको है? फिर मैं सोने के लिए जाता हूँ, नींद आएगी क्या? नींद नहीं, क्यों? कल देखना है उसको, उसने धमकी दिया मेरे को, थ्रेटन किया मेरे को, कल देखना उसको। मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में शरीर की आवाज सुनता हूँ, शरीर बोलता है अरे उसने एक बोला तू दो बोल यार, और दो फिर बोलते चार, चार बोले तू आठ बोल, ऐसा शरीर की आवाज को सुनकर मैं जी। अब ध्यान रखना, अब मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन बिता रहा हूं, बराबर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन। मैं स्कूटर लेके शाम को यहां से जाता हूं, एक आदमी सामने से आके टक्कर मार, सबसे पहले मुंह कौन खोलेगा? जोर से बोलो, पंकज का आवाज आपका आवाज नहीं सुनेगा, वो बोलेगा है ना, बोलेगा क्या है दिखता जी, मैं क्या बोलूंगा, अरे कहा जाओ पैसा दो 100 रुपया, अरे क्या है, अरे बोले 100 रुपये दे क्या जाओ, ठीक है ठीक है, जानते जाता नहीं टक्कर करता है बोल के वो चला गया। मैं चुपचाप घर आ जाता, मेरे बीबी ने क्या बनाया, चिकन बिरयानी, खाऊंगा क्या, अरे एक दो बोटी एक्स्ट्रा खाऊं, क्यों? आज प्रभु ने मेरे को एक व्यक्ति के सामने अच्छा नमूना एग्जाम्पल का जीवन जीने, मेरा मुंह बंद रखा, पवित्र आत्मा ने बोला चुप रहो, मैंने चुप रहा, मेरे को बहुत अंदर से खुशी, इसके नाम पर दो ठो लेग पीस, और फिर बाद में मेरा बीवी बुलाएगा प्रेयर करने के लिए, चलो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करूंगा क्या, फिर रात को सोने जाऊंगा, नींद आएगी क्या, सपने भी आएंगे, नींद भी आएगी सपने भी आएंगे, क्यों? पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताए, शरीर की आवाज को सुन सकता था लेकिन सुना नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन बिताया, इसलिए मैंने क्या किया, शरीर के ऊपर जय प्राप्त किया। अजीज विश्वासियों, यदि आपको और मुझे हमें शरीर के ऊपर जय पाना है, सबसे पहले क्या करना है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपना जीवन बिताना है। पवित्र आत्मा हमें बताता, हमें समझाता है, ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा देखो, ऐसा मत देखो, क्या करना है क्या नहीं करना, सब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, लेकिन सुनने वाले कान और मानने वाला हृदय होना चाहिए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताएंगे, जरूर प्रभु हमें आशीष देगा। सेकेंडली, गलेशियंस चैप्टर 5:24, गलतियों की पत्री 5:24, गलतियों की पत्री 5:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। सेकेंडली, क्रूसीफाई द वर्क्स ऑफ फ्लैश, शरीर के कामों को मारना है, क्रूस पर चढ़ाना है, शरीर के कामों के लिए क्या करना है, अपने आप को मरा हुआ समझना, मैं मरा हुआ हूं, शरीर मुझसे कहेगा अरे तुम झूठ बोलो, लेकिन मुझको शरीर से कहना है नहीं, मैं मरा हुआ हूं, मरा हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, अरे तुम गुस्सा करो, अरे नहीं कर सकता, मैं मरा हुआ हूं, मरा हुआ आदमी गुस्सा नहीं कर सकता। शरीर के कामों को, जो लोग मसीह यीशु में है, लिखा है ना साफ साफ, अब जो मसीह में है, मसीह के लोग शरीर को अपने लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा, तो शरीर के कामों को जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ाते, मतलब शरीर के कामों के लिए अपने आप को मरा हुआ भी समझते हैं, तब तक हम शरीर पर जय नहीं पा सकते। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, एक राज की बात बता रहा हूं, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, और हमारे राजस्थान में बहुत मिठाइयां और मुझे मीठा खाना इतना पसंद है, एक दो टुकड़ों में बात, हमारे तो कि किलो में हिसाब चलता है, बात होती है कितना किलो चाहिए, हाँ 2 किलो चाहिए, ऐसे खूब मिठाई खाओ। जोधपुर में एक स्वीट मिलता है, शायद नेल्सन भाई को पता होगा, मावा कचौरी बोलते हैं, स्वीट कचौरी, उसमें अंदर ऑलरेडी मावा होता है, उसके ऊपर चाशनी भी डालकर, और साधारण आदमी जो मावा कचौरी जो मीठा इतना पसंद नहीं करता है, वो एक मावा कचौरी का आधा खाने में भी उसका सिर में चढ़ जाए। लेकिन हम लोग कम से कम 4-5 मावा कचौरी नहीं खाए जब तक, तब तक लगता नहीं है कि मीठा बहुत पसंद, मुझे मीठा बहुत पसंद। और ये जो आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कोई खाने पीने का नहीं है, ये मीठा खाने का। अभी भी मेरा बीवी ने स्पेशली बोला है, मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आप मीठा बिल्कुल बंद कर। इसलिए अभी कुछ दिनों से मीठा बंद करके रखा। तो मान लो मेरे को मीठा बहुत पसंद है, मैं मर गया शरीर में, मेरा डेड बॉडी यहां पड़ा। इतने में आप में से एक भाई बोलते हैं, बहुत अच्छे भगत मर गए, क्या एक काम करो, इनको मिठाई बहुत पसंद है, इनको मिठाई बहुत पसंद, थोड़ा यहां से मिठाई लेकर, कौन सा दुकान है यहाँ मिठाई का पास में फेमस, एमएम मिष्ठान भंडार, एमएम मिठाई वाले के यहां से 2 किलो मिठाई लेके आओ ब्रदर के लिए, अभी ब्रदर उठ जाएंगे, क्योंकि इनको इतना मीठा दीवाने थे। तो नरसिंह भाई जाकर 2 किलो मिठाई लेकर आता, मेरे मुंह के पास रख, मेरे मुंह के पास, मैं उठूंगा क्या है? नहीं, मिठाई पसंद है, इतना पसंद है, मर गया कि क्या कोई फायदा। फिर आप में से एक बोलते हैं, अरे ये तो बॉम्बे का मिठाई है ब्रदर, ओ राजस्थान का मिठाई लेकर आओ, है क्या कचौरी बोला उन्होंने, मावा की कचौरी लेकर आओ, तब देखना कैसे उठेंगे। तो जल्दी से आप पार्सल से मावा कचौरी मंगाते हैं, 10 मावा कचौरी मंगाते, वो 10 मावा कचौरी ला के रखो पास में, उठूंगा क्या? इतने में आप में से एक बोलते हैं, अरे ब्रदर पास रखने से क्या फायदा, थोड़ा मुंह फाड़ के एक कचौरी अंदर डालो खड़ा, तब देखना कैसे उठेंगे, तब उठेंगे क्या? मुंह फाड़ के, 4 जने मेरा मुंह फाड़ के एक जना अंदर डालता है गुलाब जामुन, तो भी मैं उठूंगा क्या? नहीं, क्यों? मर गया, शरीर में अब कोई जीवन नहीं, शरीर निष्क्रिय हो गया। लेकिन उसके विपरीत मान लो अगर आपने मिठाई मंगाई राजस्थान से, और वो देखकर इतने में धीरे से, क्या होगा? इसका मतलब एक ही कंक्लूजन है, क्या है? पूरी तरह अभी मरा, अभी जीवन है, अभी जीवन है, ये नाटक था, मर गया बोल के ब्रदर को मिठाई चाहिए था, इसलिए मरने का नाटक पढ़ के इधर पड़ गए, देखो मिठाई आते क्या किया, उठ गए, ये सब नाटक था। उद्धार पाने के बाद भी गुस्सा करते हैं तो क्या है? एक नाटक है। हमने शरीर के कामों को अभी तक क्रूस पर अभी तक मारा नहीं है, अपने आप को मरा हुआ समझते नहीं है। अगर मरा हुआ समझेंगे तो पुरानी बातें नहीं, शरीर के बातों को हम तवज्जो नहीं देंगे, हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और शरीर के बातों को हमें हमेशा क्रूस पर चढ़ाना या जान से मारना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, रोमन्स चैप्टर 13:14, रोमियो की पत्री 13:14 पर, रोमियो 13:14 पर, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के कामों को पूरा करने का अवसर मत, गिव नो चांस टू द फ्लैश, शरीर के कामों के लिए कोई अवसर नहीं। शरीर का काम बार बार उठेगा, ऐसा करो, ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ, लेकिन नहीं, शरीर का काम अगर करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है शरीर से हम हार जाएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शरीर का काम क्या है? पाप का काम है, और शरीर के काम, शरीर के बात को सुनकर अगर पाप का काम हम करते जाएंगे, इसका मतलब पाप हम कर बैठेंगे तो हम हमारा चरित्र खोलेंगे, और चरित्र खो गया तो सब कुछ। मुझे नहीं मालूम किसने बोला है, लेकिन बोलने वाले ने सही बोला है, इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, But if character is gone, everything is gone. धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सर्वस्व कुछ नहीं है बाकी। चरित्र है सब कुछ है, चरित्र नहीं है कुछ भी नहीं। अरे चरित्र कैसे हम बचा सकते हैं? प्रभु के अनुग्रह से ये शरीर के काम के ऊपर जय पाकर, शरीर को अपने वश में रखकर। शरीर बहुत बातें हमसे करने के लिए कहेगा, लेकिन शरीर की नहीं सुनना, शरीर को एक भी अवसर नहीं देना, शरीर के कामों को क्रूस पर मार देना, शरीर के कामों के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना, और रोज पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जब हम अपना जीवन बिताएंगे, तब हम शरीर के ऊपर जय पा सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, हम संसार के ऊपर जय पाए, शरीर के ऊपर जय पाए। अब एक और काम जिसके ऊपर हमें जय पाना बहुत जरूरी है, दैट इज टू ओवरकम अवर सेल्फ। हमें अपने स्वयं के ऊपर हमें जय पाना है, टू ओवरकम अवर सेल्फ, हमारा अहम, हमारा स्वयं, हमारे खुद के ऊपर हमें जय पाना है। हम देखेंगे पहले हमारे खुद के ऊपर हमें जय क्यों पाना है। पढ़िए आइज़ाया चैप्टर 14 वर्सेस 13 एंड 14, यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 पद। क्या लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 13 और 14 पद, यशायाह 14 अध्याय 13 और 14 पद। यहाँ पर शैतान के विषय में हालांकि लिखा है, लेकिन उसके घमंड के बारे में लिखा है, और ये हमें इस बात को बताता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड्स टू प्राइड। स्वयं पर भरोसा रखना, स्वयं पर अपना विश्वास रखना हमें घमंड की ओर ले जाता है। मैं कर सकता हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, ये सब कुछ मेरे वश में है, ये सब मैं कर लूंगा। जब तक वो अहम की भावना हमारे अंदर है, ये घमंड हमारे अंदर आएगा। इसलिए इस अहम के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। वी मस्ट ओवरकम सेल्फ बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड्स अस टू प्राइड। ये घमंड की ओर हमें ले चलता है, और घमंड हमेशा बर्बादी की ओर हमें ले चलता है। इसलिए हमें अहम के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और कारण देखेंगे अहम के ऊपर जय क्यों पाना। यरमिया चैप्टर 7, यरमिया की पुस्तक उसका 7 अध्याय 23 और 24 पर, यरमिया चैप्टर 7 वर्स 23 एंड 24, यरमिया की पुस्तक 7 अध्याय 23 और 24 पर। पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। वी हैव टू ओवरकम सेल्फ बिकॉज सेल्फ एग्जॉल्टेशन डिक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड इन माय लाइफ। जब हम हमारे अहम को ज्यादा भाव देते हैं, जब हम सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम कह रहे हैं, प्रभु जी तेरी जरूरत मेरे को अपने जीवन में नहीं, मैं कर सकता हूं, ये का सब काम मेरे से संभव है, मेरे को तेरी जरूरत नहीं। ऐसा कभी भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना है, तो हमको हमारे अहम के ऊपर जय पाना है, क्योंकि अहम हमेशा इस बात को बताता है कि मैं कर सकता हूं। इसका मतलब परमेश्वर की सहायता मेरे लिए नहीं चाहिए। लेकिन इसके विपरीत होना चाहिए, प्रभु जी मैं अपने बूते पर कुछ भी नहीं कर सकता, हमेशा तू मेरी सहायता करना। इसलिए इस अहम के ऊपर जय पाना जरूरी इसलिए है क्योंकि अहम जो है परमेश्वर की प्रधानता को हमारे जीवन में कम करता है। एक और कारण हम देखेंगे, नित्य वचन की पुस्तक 15 अध्याय, अहम के ऊपर क्यों जय पाना, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:33, नित्य वचन की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 33 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:33, महिमा से पहले नम्रता, और यह नम्रता अहम भाव के ऊपर भरोसा रखने से कभी भी नहीं आए। पढ़िए 16 अध्याय 18 पद, यही पुस्तक नीति वचन 16 अध्याय, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड उत्पन्न होता है। ये घमंड कहां से आता है, सेल्फ से, स्वयं मैं हूं मैं करूंगा। जब तक इस अहम को हम अहम के ऊपर हम जय नहीं पाएंगे तब तक हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। अब इस अहम के ऊपर जय कैसे पाएं, हाउ टू ओवरकम सेल्फ, मैथ्यू चैप्टर 16:24, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 24 पद, मत्ती 16 अध्याय उसका 24 पद, डिनाय सेल्फ, अपने आप का इनकार करना, अपने आप का या अपने स्वयं का इनकार करना, प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं है, मेरा कोई अपना लक्ष्य नहीं है, तेरा लक्ष्य मेरा लक्ष्य है, तेरी महिमा मेरी महिमा है, तेरी योजना मेरी योजना है, तेरी मर्जी मेरी मर्जी है, मैं अपने आप की कोई मर्जी नहीं है, मैं अपने आप को इनकार करता हूं, मेरा अपना कोई आपा नहीं है, मेरा अपना कोई स्वयं नहीं है, मेरा अपना कोई अहम नहीं है, प्रभु जी मैं इनकार करता हूं, अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलता। इस प्रकार व्हेन वी डिनाय आवर सेल्फ, अपने आप हम अपने आप को इनकार करते हैं तभी हम अपने आप पर या अपने स्वयं पर हम जय प्राप्त कर सकते। दूसरा एक और चीज हम देखेंगे, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और 1-2 पद, किस प्रकार हम स्वयं पर जय पा सकते हैं, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 पद,
इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रखो जो स्वर्ग के, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर भी नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ।
यहाँ पर हम देखते हैं सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबाउट, हमारा मन ऊपर की बात या स्वर्गीय बातों पर निरंतर लगाए रहना। पौलुस साफ साफ कहता है अपना मन अपने मन के विचार हमेशा स्वर्गीय बातों पर लगा रहे। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, प्रभु जी मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ मर गया, तेरे साथ गाड़ा गया, तेरे साथ जी उठाऊं, अब मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहूंगा, मैं तेरी बातों की खोज में लगा रहूंगा। और प्रभु के बातों पर प्रभु के खोज में जब हम लगे रहते हैं तभी हम स्वयं के ऊपर जय पाते हैं। जब हम लगे रहना छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे प्रभु के साथ चलना छोड़ देते हैं, हम स्वयं पर भरोसा करते हैं, और जब स्वयं पर भरोसा करते हैं हम हार जाते हैं, हम गिर जाते हैं, प्रभु का हम अनादर करते हैं। एक बार दो मेंढक घूमने निकले, फ्रॉग्स हैं, दो मेंढक घूमने निकले, घूमते 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 एक घर के अंदर घुस गए, बारिश का मौसम था, एक घर के अंदर घुस गए, घर के अंदर घुसते घुसते किचन में, घर के रसोई में, किचन में घूमते 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 वो घर के स्त्री ने सब रात को सब लाइट वाइट ऑफ कर दिया तो मेंढक को सब अंधेरा है, अंधेरा कुछ दिख रहा नहीं। तो एक बार नीचे से एक ऊपर जोर से छलांग लगाई तो किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आके बैठ, दोनों ब्लड दोनों मेंढक आसपास आके बैठ। और फिर उस प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ा दूध का तपेला था, दूध का बाउल था, उसमें दूध भरा हुआ पड़ा था। और उन्होंने सोचा पता नहीं इसके अंदर क्या है, कुछ खाने पीने का सामान होगा, कूद के उसके अंदर गिर गए। तो मालूम पड़ा क्या है, ये तो दूध है। पानी के अंदर तो कैसे भी निकल के जा सकते, लेकिन दूध क्या है, स्लिप मारता है, दूध स्लिप मारता है। तो मेंढक को बहुत परेशानी। तो दो मेंढक थे, एक ने कहा यार अलविदा, मैं तो हार गया, मैं धीरे धीरे इसके नीचे जा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, अब हम नहीं मिलेंगे एक दूसरे। तो दूसरे वाले ने कहा नहीं यार, कोशिश करो, हाथ पैर मारते रहो, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हम निकलेंगे जरूर। बोले मैंने बहुत हाथ पैर मार दिया, मैं हार गया। और उसने अपना हाथ पैर मारना बंद कर दिया, वो धीरे धीरे दूध के तपेले के नीचे आके वो मर गया और नीचे। दूसरा मेंढक ने क्या किया मालूम है, वो हिम्मत नहीं हारा। उसने क्या किया, वो अपने पतले पैर से वो दूध को मारता गया, रात भर मारता रहा। और जब सुबह हुई उसने देखा कि वो दूध के ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर बैठा। क्या हुआ, वो मार मार के दूध को बनाया मलाई, मलाई को बनाया मक्खन, और मक्खन जब ऊपर आया ये मेंढक जनाब ऊपर सिंहासन पर बैठा। फिर जब दिन खुला वो एक छलांग लगाई नीचे, नीचे के बाद बाहर, बाहर के बाद वापस अपने घर में चला गया। क्या हुआ, अपने कोशिश में वो बराबर लगा रहा। फिर पौलुस कुलुसियों के पत्र में क्या कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, छोड़ना नहीं। अरे ब्रदर मैंने बहुत कोशिश की, मैं तो हार गया, मैं छोड़ रहा हूं। तो वो दूसरे मेंढक के समान आप भी डूब के मर जाओ, छोड़ना नहीं, लगे रहो, कुछ ना कुछ होगा, लगे रहो, प्रभु की खोज में लगे रहो, तब शरीर के ऊपर अपने स्वयं के ऊपर हम जय पाएंगे। एक और पद हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4:13, फिलिपियंस चैप्टर 4:13, फिलिपियों 4:13,
जो मुझे सामर्थ प्रदान करता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता
हूं। पुट योर कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट, अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखना। पौलुस कहता है जो मुझको सामर्थ देता है उसमें होकर मैं कुछ कुछ कर सकता हूं, ऐसा लिखा है। उसमें होकर मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, ऐसा लिखा है। उसमें होकर मैं छोटी छोटी बातें कर सकता हूं, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं क्या कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु पर भरोसा रखकर, अपने ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रभु के ऊपर भरोसा रखने से मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक और अंतिम बात देख के हम आगे बढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 पर, 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 पर,
निरंतर प्रार्थना करते रहो।
प्रार्थना करने के द्वारा हम अपने अहम के ऊपर जय पा सकते हैं। By spending more time in prayer, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा हम हमारे अहम के ऊपर, हमारे सेल्फ के ऊपर हम और अधिक जय पाते जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हमें संसार के ऊपर जय पाना है, और किस प्रकार हमें शरीर के ऊपर जय पाना है, किस प्रकार हमें अपने अहम के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर जय पाना है। अब हम एक और बात देखेंगे, किस प्रकार हमें पाप के ऊपर जय पाना है, हाउ टू बी विक्टोरियस ओवर सिन, किस प्रकार हमें पाप के ऊपर जय पाना है? है हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1:8-10 तक हम पढ़ेंगे, 1 John 1:8-10, 1 यूहन्ना 1:8-10।
यदि हम कहें
अपने पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा कर ले और हमें सब अधर्म से मुक्त करने में बहुत मुद्दा कर
ले। हाँ।
हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे मुद्दा कराते हैं और उसका वचन मुझे नहीं।
यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित योहन्ना हमें समझाता है किस प्रकार हमें पाप के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। पाप के ऊपर हमें जय क्यों पाना है? पहला कारण, वी हैव टू हैव विक्ट्री ओवर सिन बिकॉज सिन इज कमिटेड अगेंस्ट गॉड एंड गॉड हेट्स सिन। पाप हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध किया जाता है और परमेश्वर पाप से क्या करता है? घृणा। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है, पापी से प्रेम करता है। हम जब पापी थे, हम जब परमेश्वर के दुश्मन थे, उस समय उसने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा और आज भी उसने ये प्रावधान हमारे लिए रखा है कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे हम नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब हम पाप करते हैं, पाप हम परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं और परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, परमेश्वर पाप को घृणा करता है, इसलिए हमें पाप के ऊपर जय पाना है। दूसरा कारण, बिकॉज सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड, पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। दो बातें हैं, परमेश्वर हमें पाप से अलग करता है और पाप हमें परमेश्वर से अलग। जब हम हमारे जीवन में पाप करते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में 9 पद में परमेश्वर एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, एडम वेयर आर यू, आदम तू कहां है? आदम ने पाप किया, परमेश्वर के सामने से दूर चला गया, परमेश्वर के सामने से छुप गया, परमेश्वर पूछता है तू कहां है? जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, इसलिए पाप के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। अनदर रीजन वाई वी हैव टू बी विक्टोरियस ओवर सिन, बिकॉज सिन ब्रिंग्स सफरिंग ऑन द इनोसेंट। पाप जो है निर्दोष लोगों के ऊपर भी है बहुत दुख और दर्द लेकर आता है। हम पाप करते हैं तो दूसरे के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, दूसरों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए पाप के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। एक और कारण, पाप के ऊपर जय हमें इसलिए पाना है बिकॉज सिन नेवर गोज अनडिटेक्टेड। पाप को कभी भी हम छुपा कर नहीं रखते। अगर मैं पाप करता रहता हूं एक दिन के लिए छुपा सकता हूं, 2 दिन के लिए छुपा सकता हूं, शायद कुछ टाइम के लिए छुपा सकता हूं, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर का वचन कहता है योर सिन विल फाइंड यू, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। इसलिए पाप के ऊपर हमें जय पाना है। क्यों? क्योंकि पाप हमेशा सामने आएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और एक झूठ को छुपाने के लिए शायद 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसके बाद 51वीं बार हम क्या बोलेंगे? सच। तो झूठ बोलना ही क्यों? इसलिए पाप के ऊपर जय पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाप हमेशा एक दिन रोशनी पर आएगा, इसलिए पाप के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। अब पाप के ऊपर हम जय कैसे पा सकते हैं? पढ़िए रोमियो 7 अध्याय 18 पद, Romans chapter 7 verse 18, Romans 7 अध्याय 18 पद, हाउ टू ओवरकम सिन। कैन ओवरकम सिन बाय डेली प्रेयरफुल डिपेंडेंस ऑन गॉड। परमेश्वर पर रोज प्रार्थना पूर्वक निर्भर होकर विश्वास करके जब हम जीवन बिताते हैं हम पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मेरे शरीर के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं है, मैं प्रभु के अनुग्रह पर, प्रभु के भरोसे पर मैं अपना जीवन बिताता हूं, इसलिए पाप के ऊपर मैं जय पा सकता हूं। Another thing, Job chapter 31 verse 1, Ayub 31 अध्याय 1 पद, Job chapter 31 verse 1, अय्यूब 31 अध्याय 1 पद। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है या समझौता किया है या एग्रीमेंट किया है, क्या किया है, कि मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं, मतलब मैं पाप के ऊपर अपनी आंखें, मैं अपनी आंखों से पाप नहीं, मीन्स गार्ड योर इनलेट्स, हमारे हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कहां जाते हैं, हमारे कदमों को बहुत ध्यान रखना, बहुत हमारे जीवन के साथ कि हमें एक वाचा बांधना है, प्रभु जी मैं आपके अनुग्रह से पाप नहीं करूं, एक डिटर्मिनेशन, एक प्रार्थना मन में होना चाहिए। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ एक एग्रीमेंट किया है, मैं अपनी आंख से कोई बुराई, गार्ड योर इनलेट्स। तीसरी बात, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5। नेवर एंटरटेन सिंफुल थॉट्स, पाप में विचार को कभी भी पालना नहीं अपने जीवन, नेवर एंटरटेन सिंफुल थॉट्स। पौलुस कहता है हर एक विचार और हर एक भावना जो मसीह के विरुद्ध में उठती है उसका हम खंडन करके मसीह के कैद में लेकर, मसीह के अधीन में लेकर आते हैं। भावनाओं में हम विचार नहीं कर पाप नहीं करते, हमें हमारे विचारों में हम पाप नहीं करते, हमारे वैचारिक जीवन को भी संभालना बहुत ही जरूरी है। एक और पद हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 119, साम्स नंबर 119 वर्स 9, भजन संहिता 119 उसका 9 पद, जवान अपनी चाल को किस रीति से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार ध्यान रखने से। सैचुरेट योर लाइफ विद गॉड्स वर्ड, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भर दीजिए, अपने जीवन को, हमारे जीवन को जब हम परमेश्वर के वचन से भर देते हैं हम पाप से बचते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी प्रभु के भक्त ने कहा है, द बाइबल विल कीप यू अवे फ्रॉम सिन एंड सिन विल कीप यू अवे फ्रॉम बाइबल, बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा। अगर आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, बाइबल की बातें आपके जीवन में है, आप पाप से दूर रहेंगे, लेकिन पाप अगर आप करते रहे बाइबल आपसे दूर, इसलिए हम अपने आप को जांचें क्या हम पाप के ऊपर जय पाते हैं या नहीं। ये तमाम चीजें करने के बाद भी अगर हम पाप कर जाए तो क्या करना चाहिए है? ब्रदर मैं प्रार्थना पूर्वक प्रभु पर भरोसा रखता हूं, मैं अपने गार्ड इनलेट्स को गार्ड करता हूं, मैं विचार को संभालता हूं, पवित्र रखता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके अनुसार जीता हूं, फिर भी पाप कर जाता हूं कभी कभी, तो क्या करना चाहिए। पहला योहन्ना 1 अध्याय 9 पद हमने पढ़ा, उसको एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला योहन्ना पहला अध्याय उसका 9 पद, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, कन्फेशन एंड फॉरसेक, उसका अंगीकार करना और उसको त्याग देना, तब हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। ये सब करने के बावजूद भी अगर हम पाप कर जाएं तो क्या करना है, माफी मांगना है और हमेशा के लिए उस पाप को छोड़ना है, त्यागना। माफी कैसे मांगना है, आवर कन्फेशन मस्ट बी इमीडिएट, तुरंत हमें माफी मांगना है, रुकना नहीं है, तुरंत हमें माफी मांगना है। सेकेंडली आवर कन्फेशन मस्ट बी अनकंडीशनल, बिना शर्त के हमें माफी मांगना। अगर हमने किसी भाई के विरुद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप किया है, गलत किया है, हमको इस बात के लिए हमको ऐसा शर्त नहीं रखना है कि अगर वो माफ करेगा तो मैं भी माफ करूं, नहीं, बिना शर्त के माफ करना है या माफी मांगना है. थर्डली आवर कन्फेशन मस्ट बी कंप्लीट. संपूर्ण रीति से माफी मांगना है. एक दिन एक भाई ने गलती किया है. वो गलती क्या था? पाप किया. क्या पाप था मालूम है? चोरी किया. क्या किया? चोरी किया. चोरी करना पाप है. तो कलीसिया के एल्डर्स ने बोला, देखो आप आपके पाप को मान लो और कलीसिया में सामने खड़े होकर बोलो कि मैंने चोरी किया और प्रभु आपको आशीष दे, है ना. तो बोले ठीक है मैं मान लूंगा. तो अगले दिन अगले संडे चर्च में आया और बोला मैंने चोरी किया, मैं मानता हूं अपना पाप, प्रभु मेरे को माफ करें. तो जिस भाई का चुराया सामान, वो भाई पीछे बैठ के बोले, थोड़ा बोलो क्या चुराया. हाँ मैंने चोरी किया बोलने से काम नहीं चलेगा, क्या चुराया वो भी बोल. तो बोले हाँ ठीक है, तो मैं बोलता हूं मैंने एक रस्सी चुराया इसलिए प्रभु मेरे को माफ. तो वो भाई वापस बोले, वो रस्सी के लास्ट में क्या था वो भी बोलो. तो बोले हाँ वो रस्सी के लास्ट में वो घोड़ा बांधा था, तो मैंने रस्सी चुराया मतलब क्या चुराया? घोड़ा चुराया. तो सीधा ये नहीं बोल रहे घोड़ा चुराया, पहले क्या बोल रहे, मैंने एक चोरी की तो प्रभु मेरे को माफ. वो बोले क्या चुराया? मैंने एक रस्सी चुराया प्रभु मेरे को माफ. अरे वो रस्सी के लास्ट में क्या था? घोड़ा था. एक घोड़े की कीमत क्या है? लाखों में. मैंने एक घोड़ा चुराया मेरे को माफ. तो मतलब हमारा जो माफी जब हम मांगते हैं प्रभु से, इट मस्ट बी कंप्लीट कन्फेशन. नेक्स्ट, इट मस्ट बी स्पेसिफिक. बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए किस बात के लिए हम माफी मांग रहे हैं, किस पाप के लिए हम माफी मांग रहे हैं. चोरी करके व्यभिचार के लिए हम माफी नहीं मांग सकते. व्यभिचार करके हम चोरी के लिए माफी नहीं मांग सकते. हम जो काम किया गलत, उस गलत काम के लिए माफी मांगना बहुत. एंड फाइनली आवर कन्फेशन मस्ट बी हार्टफेल्ट. हमारा माफी हृदय से आना चाहिए. हृदय से हमें माफ करना चाहिए. हृदय से हमें पाप को छोड़ना चाहिए. और गलती हो भी जाती है जब भाइयों में आए, हम आपस में गलती कर जाते हैं, माफी मांगते हैं, माफ करते हैं. दिल से करना बहुत जरूरी. मुझे नहीं मालूम आपने वो कहानी सुनी है कि नहीं, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया. तो बहुत समय तक झगड़ा चलता रहा है, वो सुलझने का नाम ही नहीं है. फिर बहुत दिनों के बाद उस असेंबली में एक ऐसा यूथ एनिवर्सरी जैसा हुआ, तो उसमें एक स्किट करना था, एक नाटक करना था. वो नाटक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ाए जाने के ऊपर था, क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट. तो जो यीशु मसीह का रोल कर रहा था वो, और जो कोड़े मारने वाला सैनिक था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था. आया समझ में? कोड़े मारने वाले और ये यीशु मसीह के बीच में, दोनों एक ही चर्च के, दोनों एक ही चर्च के यूथ से, इनके बीच में लड़ाई हुआ था. तो ठीक से माफी नहीं मांग. तो स्किट वगैरह कर रहे रिहर्सल में, तो सब धीरे से मारा उसको, कोड़ा धीरे से मारा. फिर जब फाइनल नाटक करने का समय आया, सब चर्चेस का और आस पड़ोस के चर्चेस में किसी भी आए और दूसरे मेहमान भी आए, दोस्त भी आए, सबके सामने नाटक, फुल लाइट्स हैं, ड्रेस, साउंड, सबके ऊपर माइक्स लगा के रखे, हैंगिंग माइक्स, इतना सेंसिटिव माइक्स है ऐसे सांस लेते हैं तो भी आवाज सबको, पीछे बैठने वालों को भी सुनाई देता. तो कोड़े मारने वाले ने कहा, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, अभी ये मौका छोड़ दे तो वापस आएगा नहीं. हमारे मलयालम में बोलते हैं, किट्टे अवसर हम पार आकर, मतलब जो अच्छा अवसर मिला उसको बर्बाद नहीं कर देता. वो देखो वो सूली पर है, अभी वो कुछ भी बोलेगा सीधा कहां से आएगा? माइक से आवाज. तो उसने क्या किया, जैसे उसका रोल आया, वो बैंत अच्छा पकड़ के कस के एक दे दिया. उसको बहुत दुखा, किसको? ये लड़के को जो यीशु मसीह का रोल कर. तो एकदम इसने धीरे से बोला, लेकिन उसका धीरे भी इतना जोर से था कि सबने सुनी. इसने क्या बोला मालूम है? ओए जी उठने दे मेरे को, फिर देख लूंगा. मतलब मैं अभी कौन हूं? मैं तो यीशु मसीह हूं, अभी मेरे को गाड़ेंगे, फिर मेरा पुनरुत्थान भी तो होगा. पुनरुत्थान उत्थान के बाद तेरे को दिखे। क्या मत, कई बार ऐसे माफ कर, इट मस्ट बी फ्रॉम द हार्ट। इसलिए पाप के ऊपर जब तक हम जय नहीं पाएंगे तब तक दुनिया में हम जयवन जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए अजीज विश्वासियों, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम इस दुनिया के ऊपर जय पाए, हम हमारे शरीर के ऊपर जय पाए, हम हमारे अहम के ऊपर जय पाए, हम हमारे जीवन में पाप के ऊपर जय पाए, तभी हम जयवन से भी बढ़कर अपना जीवन बिता सकते। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और एक पल के लिए अपने आप के जीवन को जांचें। दिस इज अ वेरी सॉलम टाइम, ये एक बहुत ही गंभीर समय है, हम अपने आप के जीवन को जांचें। जब सब सर झुके हुए हैं और जब सारी आंखें बंद हैं, हम अपने आप के जीवन को जांचें। प्रभु जी, मेरा जीवन आपके सामने कैसा है? क्या हम दुनिया के ऊपर जय पाते हैं? क्या हम शरीर के ऊपर जय पाते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन बिताते हैं? क्या हम अपने स्वयं के ऊपर जय पाते हैं? क्या हम प्रभु पर भरोसा रखकर अपना जीवन बिताते हैं? क्या हम पाप के ऊपर जय पाते हैं? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चलकर पाप के ऊपर जय पाकर क्या हम प्रतिदिन का जीवन बिताते हैं? हम अपने आप के जीवन को जांचें परखें। यदि किसी बात में हम कम पाए जाते हैं, अभी भी समय है, अपने आप को हम प्रभु के हवाले करके प्रभु से हम अनुग्रह मांग सकते हैं। यदि आज तक किसी ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, आज भी समय है। दिल से अगर हम ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को माफ कीजिए, मेरे दिल में आइए, मैं आपको ग्रहण करता हूं, प्रभु आपके दिल में आएगा, प्रभु आपको स्वर्गीय आशीषों से भरेगा, प्रभु आपको एक नई सृष्टि बनाएगा, जयवन से भी बढ़कर जीने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगा। और यदि आप दुनिया के ऊपर, इस शरीर के ऊपर, स्वयं के ऊपर, पाप के ऊपर जय नहीं पाए हैं, प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु से दया मांगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा और आप जयवन से भी बढ़कर जीवन बिता पाएंगे।